ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के तीन चीजें स्थापन करते हैं, धर्म, राज्य और कुल। आदि सनातन देवी देवता धर्म, दैवी राज्य और दैवी कुल। और बाबा ने आज नशा चढ़ाया है कि तुम बच्चों द्वारा स्थापन कर रहे हैं, भगवान अकेला तो नहीं करेगा। वो धर्म पिताएं आते हैं तो अकेले धर्म की केवल स्थापना करते हैं, लेकिन शिव बाबा आकर के धर्म, राज्य और कुल तीनों की स्थापना करते हैं। तो हम बच्चे उनके मददगार बनते हैं। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए कि हम बच्चे इस समय भगवान के मददगार हैं, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं, एक दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, दैवी कुल बना रहे हैं। और उसके लिए बाबा क्या करते हैं, आकर के हम बच्चों को कांटों से फूल बनाते हैं। अब इतने कांटे बन गए थे तो उस दैवी राजधानी में तो फूल ही फूल है, तो इसलिए कांटों से हमें फूल बनाते। तो बाबा इस संगम पर कितना बड़ा कार्य करते हैं, लेकिन बच्चे हम मददगार हैं। ये नशा सदा रहे, पर नशा भी तब चढ़ेगा, मददगार भी तब बन सकेंगे जब उनकी श्रीमत पर चलेंगे। तो आज बाबा की सारी मुरली इसी पर है, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 1/9/2025 है। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग, ये नाम किस आधार पर है, क्योंकि इस समय भगवान आकर उत्तम से उत्तम पुरुष बनाते हैं। तो तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष है लक्ष्मी नारायण। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? इतना बड़ा कार्य बाबा आकर करते हैं और हम बच्चे उनके मददगार हैं उस कार्य के लिए, लेकिन बड़े गुप्त रूप से कर रहे हैं। दुनिया को तो पता भी नहीं चलता कि ऐसा भी ये कार्य यहाँ चल रहा है। तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना। तुम बाप के साथ गुप्त रूप से ये कार्य कर रहे हो। बाप भगवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम सब कांटे बन गए थे, हमें फूल बना रहे हैं, तो फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक, हाँ खतरनाक, जंगल में तो कितने खतरनाक जानवर होते हैं ना, पर उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती नहीं, सब सुख देने वाली चीजें हैं वहां। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। कौन सा? जिस दिन का रास्ता तकते थे। तो आखिर वो दिन आया जबकि भगवान आकर फिर से इस संसार का परिवर्तन कर रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा, आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। तो रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। ये संगम युग भी है, पर बाबा करेक्शन करते हैं, केवल संगम युग नहीं कहो, क्या कहो साथ में, इनको पुरुषोत्तम संगम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। इसलिए यही संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग है। और संगम है लेकिन उनको पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे, क्योंकि पुरुषोत्तम देवता ही वहां रहते हैं, तो उसको भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। तो बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वो भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहां ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात, पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है, पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष, ये राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। ये ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर। कौन सी बात, सब धर्म वाले भी मानेंगे कि बरोबर ये हेविन के मालिक थे, लक्ष्मी नारायण हेविन के मालिक थे, ये सब धर्म वाले मानेंगे। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कैसी विडंबना, भारत में रहते हैं पर भारतवासी ये नहीं जानते कि कैसे ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे और ये स्वर्ग भारत में ही था। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है ये समझते नहीं। आप ही सिद्ध करते हैं कि स्वर्ग गया, कोई शरीर छोड़ा वह स्वर्ग गया, इसका मतलब नरक में था। हेविन तो जब, इसका मतलब नरक में था, पर हेविन तो तब हो, अभी तो हेविन नहीं है जो हेविन में गया, पर हेविन भी तब हो जब बाप स्थापन करे, इसलिए हेविन में तो गया ही नहीं, वो तो फिर यहां ही जन्म लेगा हेल में। हेविन में तो जब बाप स्थापन करे तब जाए, वो तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। तो दो चीजें है ना, एक है स्वर्ग और दूसरा है नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को फिर लाखों वर्ष कह देते हैं, सतयुग को लाखों वर्ष हो गए तो वो स्वर्ग भी भूल गए। तुम बच्चे समझते हो कल ही स्वर्ग था, हमारे लिए तो कल था, दुनिया वाले समझते हैं लाखों वर्ष पहले था। कल स्वर्ग था, इनों की राजाई थी लक्ष्मी नारायण की, फिर बाप, फिर से अब बाप से वर्षा ले रहे हो, उसकी राजधानी लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जाने लिए फिर से वर्षा ले रहे हो। तो बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा अपतित है। अपतित है तो क्या कहना है, तुम्हारी आत्मा अपतित है, इसलिए हेल में ही है। अभी तुम हेवन में नहीं हो, स्वर्ग में नहीं हो, अभी तक नरक में ही हो, क्योंकि आत्मा पतित है। कहते भी हैं, अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी है, तो जरूर कलयुगवासी कहेंगे ना, पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बिचारे घोर अंधियारे में हैं, पिछाड़ी में क्या होगा, जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। आग लगेगी सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है प्रीत बुद्धि, लेकिन प्रीत बुद्धि भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है। जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना क्या होगा, उतना ऊंच पद पाएंगे। तो ऊंच पद पाने के लिए क्या कसौटी है, प्रीत बुद्धि बनना है। सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है, भल प्रेम के आंसू भी आए अच्छा है। अगर प्रेम के आंसू आते हैं बाबा की याद में, कई आते हैं ना, हम इतना रोते हैं तो हम पूछते हैं प्रेम के आंसू है या दुख के आंसू है, तो कहते नहीं प्रेम के आंसू है, फिर अच्छी बात है, भले प्रेम के आंसू बहाओ। भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर के मिले, बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो, ऐसे अंदर में कहो तो बाबा के प्यार में भले आंसू भी आ जाए। बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो, हम विषय सागर में गोते खाते कितने दुखी होते आए, ऐसे बाबा से बातें करो। अभी ये है रौरव नरक, अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है, मूल वतन क्या है ये भी आकर बताया है। कोई उस मूल वतन को भी नहीं जानते हैं, तो बाबा ने आकर बताया मूल वतन क्या है, ये भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे, मूल वतन क्या है जानते थे क्या, बस कुछ भी नहीं। इसको कहते ही है इस दुनिया को कांटों का जंगल, स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना, तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं, बाबा तो आकर कांटे से फूल बनाते हैं, फिर फूल से कांटा कौन बनाते हैं, रावण। भगवान को भी कहना पड़ता है रावण ने तुमको फूल से कांटा बनाया है। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है, जंगल में तो जानवर बिच्छू आदि रहते हैं, कैसे कैसे जानवर रहते हैं जंगल में। सतयुग में बाबा देखो कैसे कंट्रास्ट भी करते रहते हैं, सतयुग में ये खौफनाक जानवर आदि होते नहीं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है, श्री कृष्ण को सर्प ने डसा ये हुआ, अब श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। तो बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, ज्ञान सागर एक ही बाप है, ऐसे नहीं और किसी को भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे सिवाय एक बाप के। तो बाबा कहते ऐसे भी नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी ज्ञान का सागर कहेंगे, नहीं, केवल एक शिव बाबा को ही कहेंगे ज्ञान का सागर। नहीं, पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे, ज्ञान से ही मनुष्य की सदगति होती है। सदगति है, सदगति के स्थान दो है, कौन से सदगति के दो स्थान, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम, गति और सदगति। तो मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम ये सदगति के स्थान है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु परंतु क्या, गुप्त। अभी कौन समझेगा कि हम यहाँ बैठे हैं और राजधानी स्थापन कर रहे हैं बैठे बैठे। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है ही नहीं, इसलिए बाप को क्या कहते हैं, निराकार गॉड फादर। इसलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है, तो बाकी सब है साकारी। जो भी अपने चोले में है, शरीर रूपी चोले में, वो सब है साकारी। इनको कहा जाता है शिव बाबा को इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, निराकार परम पिता परमात्मा, इनकॉर्पोरियल आत्माओं का। किसका पिता है वो? निराकार आत्माओं का। तो तुम आत्माएं भी वहां रहती हो, पाप भी वहां रहते हैं, परंतु है गुप्त, सब कुछ गुप्त कार्य चल रहा है। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। अब मूल वतन में तो कोई दुख नहीं है, न सुखधाम में दुख है न मूल वतन में दुख है। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में, कल्याण करना है अपना मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाना है, दुखों से छूटना है, तो तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में। कौन सा, कौन से एक बात में कल्याण है? बाप को याद करो, इसी में ही कल्याण है। मन मना भाव, बस बाप का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है। बाबा कहा, बाबा के वर्षे का हकदार बना। तो बाप का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है, हाँ बना निश्चित है ही है कि उसको वर्षा मिलेगा। अलफ को याद किया तो वर्षा जरूर है, सतयुगी नई दुनिया का। कौन सा वर्षा है? सतयुगी नई दुनिया का। इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है, अवश्यंभावी है, हो ही नहीं सकता कि पतित दुनिया का विनाश न हो। अभी भी सुनकर आ रहे थे कि अफगानिस्तान में बड़ा भूकंप आया है 6 रिक्टर स्केल पर, और दिल्ली तक उसका असर आया है, रात को 12 बजे। तो देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, पता नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं अलफ को याद किया तो वर्षा जरूर है, सतयुगी नई दुनिया का। इस पतित दुनिया का विनाश तो जरूर होना ही है, अमरपुरी में जाना ही है, निश्चित है, सब निश्चित है, अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर भी कितने जाते हैं, वहां तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते सब है ठगी, सच की रत्ती भी नहीं। गाया भी जाता है झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। इसका भी अर्थ होना चाहिए, क्या मतलब है इसका झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार? क्यों इसका अर्थ क्या है कि यहाँ सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ। यह भी ज्ञान की बात है ना कि सब कुछ झूठ है, बाकी तो सब सच है, पता है सब ये है हा? तो इसीलिए ये भी ज्ञान की बात है कि सब झूठ है। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है। अभी ये ग्लास है, कोई कहे नहीं ये तो कटोरा है, तो थोड़ी कहेंगे कटोरा ये तो ग्लास है, तो इसको नहीं तो इसको ग्लास का तो ये झूठ थोड़ी है, ये ठीक है। परंतु किसको झूठ कहेंगे किसको सच कहेंगे वो बाबा बताते हैं। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है, बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाला एक बाप ही है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना, आजकल झूठ का तो बहुत शो है। किसी ने बताया था कि सच्चा हीरा और झूठे हीरे में क्या अंतर है, कैसे पता चलेगा, दोनों ही इतने चमकते हैं, आर्टिफिशियल हीरा भी बहुत चमकता है लेकिन कैसे पता चले? तो उसको धूप में रखो, दोनों को धूप में रखो, आर्टिफिशियल हीरा भी और सच्चा हीरा भी। तो जो आर्टिफिशियल हीरा होगा वो धूप में गर्म हो जाएगा, क्योंकि सिंथेटिक है ना, वो कोई सच्चा हीरा नहीं है। और जो सच्चा हीरा होगा वो धूप में भी गर्म नहीं होगा, वो सच्चा ही रहेगा, वो गर्म नहीं होगा, उठाएंगे कुछ भी नहीं, पर आर्टिफिशियल तो गर्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं आजकल झूठ का भी बहुत शो है, उनकी चमक ऐसी होती है, सच्चे से भी अच्छे, सच्चे से भी ज्यादा चमकते हैं। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए। विलायत में तो सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी के इतने दुकानें हैं, बात मत पूछो, जहां भी जाओ। तो पिछाड़ी में विलायत से आए हैं, झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता भी नहीं पड़ता है। फिर ऐसी चीजें भी निकली है जिससे परखते हैं, झूठ और सच को परखते हैं, ऐसी चीजें भी निकली है। मोती भी ऐसे झूठे निकले हैं, जरा भी पता नहीं पड़े। तो अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता, संशय वाले फिर तो आते ही नहीं है। अगर थोड़ा दिन आए भी परंतु संशय ही संशय उसकी बुद्धि में होगा तो फिर तो छोड़ देगा, आएगा ही नहीं। संशय वाले फिर आते ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, तो बाप कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान निकालो। देखो ये कब बाबा ने कहा था, बड़े बड़े दुकान निकालो। बाबा के समय तो सब छोटे छोटे सेंटर थे, अभी तो देखो कितने बड़े बड़े दुकान निकल गए। बड़े बड़े दुकान निकालो, ये एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। तुम सच्चे दुकान खोलते हो। बाबा के सेंटर्स क्या है? सच्चे दुकान। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं, उनके बड़े सन्यासी जितने होंगे उनके मठ भी कितने बड़े बड़े होते हैं, जहां बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से चली आई है, शुरू में तो ये भक्ति जो जैसे आजकल है ऐसे तो नहीं थी भक्ति। नहीं, ज्ञान से होती है सदगति, अर्थात दिन। वहां संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, और उस समय बाबा कहते और कोई धर्म होता नहीं है। तो बच्चों ने गीत भी सुना, कौन सा गीत था? आखिर वो दिन आया आज। तो बच्चों ने गीत भी सुना, तुम समझते हो आखिर वो दिन आया आज, कौन सा? संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले हैं। आखिर वो दिन आया आज जबकि हम अपने बेहद बाप से मिले हैं। बेहद का वर्षा पाने लिए पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बेहद के बाप से मिले हैं, बेहद वर्षा पानी का पुरुषार्थ कर रही है, सतयुग में नहीं कहेंगे। आखिर वो दिन आया आज ये भी नहीं कहेंगे, वो तो है ही सुख के दिन। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, ये होगा, हाँ क्या क्या कहते रहते हैं, समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं, समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, ये बहुत मदद करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन पर। और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं, न्यू ब्लड कहते हैं तो पत्थर आदि भी वही मारते हैं, हंगामा भी वही करते हैं। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे आते हैं, बूढ़े तो नहीं आएंगे, जवान ही पहले पहले आते हैं, स्टूडेंट ही आगे रहते हैं, वो बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात ही नहीं है, ऐसे थोड़ी है जवान है तो नया कोई ब्लड आएगा उनमें, तो न्यू ब्लड की तो बात ही नहीं है। बाकी ब्लड कनेक्शन कहते हैं, परिवार के जो एक एक परिवार के सदस्य हैं वो उनका ब्लड कनेक्शन है, वो अलग बात है, वो है ब्लड कनेक्शन। अब तुम्हारा कौन सा है? हमारा ब्लड कनेक्शन तो नहीं है ना, लौकिक में तो कोई भी संबंध नहीं होगा, चलो किसी का होगा, बाकी तो कहाँ देखो, मधुबन निवासी कोई कौन से स्टेट के, कोई कौन से स्टेट के, कोई कौन से स्टेट के, पर सब एक परिवार होकर रहते हैं, तो तुम्हारा वो ब्लड कनेक्शन तो नहीं है। परंतु हमारा कौन सा कनेक्शन है? रूहानी कनेक्शन। आत्मा आत्मा भाई भाई, ये रूहानी कनेक्शन है हमारा। कहते हैं ना, हाँ बाबा, बच्चे आकर बाबा को क्या कहते हैं, बाबा मैं आपका 2 मास का बच्चा हूँ। अब शरीर तो कितना बड़ा है, लेकिन बाबा को कहते हैं मैं आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं, ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। जिस्मानी बर्थडे आज बाबा ने कहा नहीं मनाना है, कैंसिल करो। ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए, वो जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, चलो बर्थडे मनाते हैं, अलौकिक जन्मदिन मनाते हैं, तो बाबा कहते ब्राह्मणों को ही खिलाना चाहिए। मनाना तो ये चाहिए ना, ब्राह्मणों को खिलाएं। वो है आसुरी जन्म, ये है ईश्वरीय जन्म, रात दिन का फर्क है। परंतु जब निश्चय में बैठे कि बरोबर ये ईश्वरीय जन्म है, इतना निश्चय होना चाहिए, और वो आसुरी जन्म था, तो इसीलिए ईश्वरीय जन्म तो भले मनाओ, परंतु वो तो आसुरी जन्म था जब पैदा हुए थे। तो ये ईश्वरीय जन्म, रात दिन का फर्क है। परंतु जब निश्चय में बैठे, ऐसे नहीं, हाँ ईश्वरीय जन्म तो मनाया, परंतु ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े। पहले ईश्वरीय जन्म में आए, ईश्वरीय परिवार में आए, फिर चले गए और फिर आसुरी जन्म में पड़े, ऐसा भी होता है। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। रफू चक्कर माना 9-2-11 एकदम भाग जाते, पता ही नहीं कहाँ है वो, तो रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं ना, तो शादी की एनिवर्सरी मनाते हैं। शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं, इसलिए उनकी एनिवर्सरी मनाते हैं। जहन्नम में जाने का दिन मनाते हैं, शादी का एनिवर्सरी मनाना माना जहन्नम में जाने का दिन, नरक में जाने का दिन। वंडर है ना, बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी, ईश्वरीय बर्थडे, इस दिन हमने नया जन्म लिया था। तो बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, उनको जन्मदिन मनाना चाहिए, वो आसुरी जन्म ही भूल जाए। हमारी दादी जी के हमेशा कहते थे मेरा ईश्वरीय जन्म ये अलौकिक जन्म तो पता ही नहीं। मैं दादियों को तो लौकिक जन्म तो पता ही नहीं था, उस समय ये इंग्लिश कैलेंडर भी नहीं चलता था, वही जो हिंदू कैलेंडर है वही चलता था। लेकिन दादी जी कहती थी मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, जब उनका पासपोर्ट बना तो भी कोई पता नहीं, वो तो डेट थोड़ी होगी, तो पासपोर्ट में तो जन्मदिन की डेट चाहिए। तो दादी जी कहती थी मेरा जन्मदिन दिवाली पर है, बस मैं दिवाली पर आई थी, दिवाली पर आई थी और बाबा के पास सरेंडर हो गए। ब्रह्मा बाबा भी दिवाली पर ही सरेंडर हुए, सब वो दिवाली का समय था जब सब सरेंडर हुए, तो हम बस वही दिन मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बस हम तो बाबा के बन गए, हाँ ये आसुरी जन्म ही भूल जाए। ये भी बाबा राय देते हैं, अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो वो आसुरी जन्मदिन नहीं मनाएंगे, केवल ईश्वरीय जन्मदिन मनाएंगे। बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा न कोई, फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। बाप की याद में मरा, अगर बाबा की याद में शरीर छोड़ा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा, ऊंचा जन्म मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, अंत काल जो स्त्री सिमरे, अपनी पत्नी को याद किया अंत काल में, तो कौन सा जन्म मिलेगा, वैश्या का जन्म मिलेगा। अंत काल जो बच्चों को याद किया तो कौन सा जन्म मिलेगा, वो तो लिखा सुअर सुकर जून वलवल उतरे। अंत काल जो धन को सिमरा तो सर्प योनि वलवल उतरे, परंतु अंतकाल जो हरि का नाम लिया, ईश्वर का नाम लिया, तो वो तो सदगति को पाए। तो बाबा कहते हैं अंतकाल भी शिव बाबा ही याद तब रहेगा जब बहुत काल का अभ्यास होगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं है तो अंत में बाबा कहाँ याद रहेगा। नहीं तो अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अब ये भी ग्रंथ में है। यहाँ फिर कहते हैं, यहाँ फिर भारत में क्या कहते हैं, हिंदुओं में क्या कहते हैं, अंत समय गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। तो अंत समय गंगा का तट हो, अब ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको बाप कहते हैं, शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो, बुद्धि में बाप और चक्र याद हो, शरीर छोड़ते समय भी। सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंतकाल याद आएगी। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापस जाना है अशरीरी होकर। शरीर के साथ तो नहीं जाएगी ना आत्मा वापस। यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा इम्प्योर है तो फिर शरीर प्योर कैसे मिल सकता है। शरीर भले गोरा हो तो भी क्या, पवित्र तो नहीं है ना। तो इसीलिए शरीर आत्मा इम्प्योर है तो शरीर प्योर फिर कैसे मिल सकेगा। बाबा ने बहुत मिसाल समझाई है, फिर भी जौहरी है ना। ब्रह्मा बाबा मिसाल देते हैं ना, जैसा सोना वैसा ही जेवर बनेगा। तो ब्रह्मा बाबा जौहरी थे तो वो जौहरात की बातें बाबा सुनाते हैं, सोना चांदी। तो बाबा ने बहुत मिसाल समझाई है, फिर भी जौहरी है ना, खुद खाद जेवर में नहीं पड़ती है, खाद तो सोने में पड़ती है। वो सोने को जो खाद वाला सोना है उसको गलाते हैं, गलाने के बाद जो सच्चा सोना बनता है फिर उसमें फिर कैसे खाद डालते हैं, क्योंकि अंगूठियां जो कुछ बनता है ये सच्चे सोने में नहीं बनेंगे। सच्चा सोना तो बहुत नरम होता है, इसलिए थोड़ा मिक्स करना पड़ता है। खाद जेवर में नहीं, सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे, 24 से 22 कैरेट बनाना है तो चांदी डालेंगे। अभी तो सोना है नहीं, सबसे लेते रहते हैं ना। उस समय तो बहुत ले रहे थे जब बाबा ने मुरली चलाई, बहुत सोना था ही नहीं भारत में, तो सोना तो जरूर चाहिए। तो फिर कैसे सोना विदेशों से भी लिया, सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं है, कागज भी नहीं है नोट बनाने के लिए, उसमें भी तो सोना चाहिए, उस अनुसार ही नोट बना सकते हैं। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया है, तो पूरी जांच रखते हैं, लॉकर्स आदि भी खुलाते हैं। क्यों, बाबा कहते हैं किसकी तभी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए, अंत में तो यही होगा ना। तो लॉकर्स भी खुलाते रहते हैं, जैसे किसकी तलाशी आदि ली जाती है ना, रेड करते हैं तो कैसे सब सब तलाशी लेते हैं। जैसे किसकी तलाशी आदि ली जाती है ना, तो गायन भी है किनकी दबी रही धूल में, आग भी जोर से लगती है, आग में तो सब पिघल जाएगा, सब जल जाएगा। तुम बच्चे जानते हो ये सब होना ही है, इसलिए क्या करो, ये सब होना ही है इसलिए बैग बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। और कोई को मालूम थोड़ी है कि तुमको वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए, ये तुम ही जानते हो और कोई नहीं जानते। 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है, तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, तुम्हारे ही तन मन धन से बाबा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम ही निवास करेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आपे ही राज तिलक लेते हो। बाबा नहीं तिलक देते, अपने पुरुषार्थ से तुम ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से ना। कृपा या आशीर्वाद से तो नहीं, बस बाबा कृपा करो आशीर्वाद करो इससे तो नहीं बन जाएंगे। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की तो बात ही नहीं है। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, तनख्वाह मिलती है ना टीचर को, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज स्कूल है तो पगार गवर्नमेंट से मिलती है, सो तो जरूर पढ़ाएंगे, पगार लेते हैं तनख्वाह लेते हैं तो जरूर पढ़ाएंगे। इतना बड़ा इजाफा मिलता है तुम बच्चों को, पद्मा पद्म पति बनते हो, श्री कृष्ण के पांव में पद्म की निशानी देते हैं। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पद्म पति बनने। पद्म पति कितने पद्म कितना होता है, यहाँ बहुत करोड़ों से भी ऊपर होता है पद्म, तो भविष्य में पद्म पति बनने। तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो, सुखी भी बनते हो साहूकार भी बनते हो और अमर भी बनते हो। काल पर तुम विजय पाते हो, तो इन बातों को मनुष्य समझ न सके। तुम्हारी आयु भी पूरी हो जाती है, पूरी आयु जीते हैं, बीच में कोई नहीं मरता, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए, गुफाएं हैं ना, एलिफेंटा केव्स है बॉम्बे के पास, इतने लंबे लंबे पांडवों के चित्र उसमें गुफा के अंदर है। तो उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे लंबे बना दिए हैं, समझते हैं पांडव इतने लंबे थे। अब पांडव तो तुम हो, पांडव तो बाबा कहते तुम हो, कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं, चलो 6 फीट है, कोई लंबे से लंबा होगा तो 7 फीट, बहुत ना टॉलेस्ट मैन भी दिखाते ना, चलो वो 7 फीट था। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं, 7-6 फुट का ही होता है अदर अधिक से अधिक। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती हो, तो इतने लंबे लंबे पांडवों के चित्र बनाए हैं तो इतने लंबे तो होते नहीं, तो 6 फीट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वो तो बड़ा बनाएंगे ना, हाँ बड़ी शिव बाबा की भक्ति होती है तो शिवलिंग भी कितना बड़ा बनाते हैं, वो तो बड़ा बनाएंगे ना। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। अभी भी देखो गणेश चतुर्थी पर कितने बड़े बड़े गणेश के चित्र, बात नहीं पूछो, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। ये सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में तो एक बार करते हैं, और जगत अम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है, तुम्हारी डबल पूजा होती है। डबल पूजा कैसे, साकार की भी पूजा मूर्तियों के रूप में पूजा होती है, देवताओं के रूप में, और फिर निराकार की भी पूजा। तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की ही होती है, तुम्हारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ। तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, बच्चे कितने बड़े हुए हैं, शिव तो शिवलिंग तो एक ही बनाएंगे और शालिग्राम कितने बनाएंगे, तो शिव बाबा के बच्चे बड़े हो गए। तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, तो मेरे से भी बड़े हो, तुम्हारी तो 2 रूप में पूजा होती है, मेरी तो केवल 1 ही रूप में पूजा होती है। तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। अब बाबा कितनी गुह्य गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, है ना, रोज की मुरली में कैसी कैसी बाबा गुह्य बातें सुनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, किसलिए भगवान पढ़ाते हैं? भगवान भगवती बनाने के लिए। कितना शुक्रिया मानना चाहिए बाबा का। हाँ, मानते ना शुक्रिया बाबा का। रोज सवेरे उठा, बाबा ने कितना नया सवेरा दिया है, तो बाबा को शुक्रिया मानते ना। सवेरे गुड मॉर्निंग तो करते हैं, पर थैंक यू भी करते हैं, शुक्रिया भी मानते हैं। जो शुक्रिया रोज मानते हैं बाबा को, वो हाथ उठाएं? सब उठाएंगे जरूर, क्यों नहीं। बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं, तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे। स्वप्नों पर भी निर्भर है, पता चलता है कि संस्कार कैसे। जैसे संस्कार होंगे ना, वैसे ही स्वप्न भी आएंगे। अगर स्वप्न अच्छे नहीं है, माना अभी तक वो संस्कार अच्छे नहीं बने, तो बहुत परिवर्तन लाना होगा अपने में। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा। हाँ, साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल हृदय बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है, ना जिस्मानी कनेक्शन नहीं, रूहानी कनेक्शन रखना है। और रूहानी कनेक्शन कौन सा है? आत्मा आत्मा, भाई भाई और भाई बहन, बस यही रूहानी कनेक्शन है, और कोई नहीं। रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, वो फिर याद भी ना आए। दूसरा, अपना बैग बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है, अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना है, अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। वरदान, स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहज योगी भव। स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहज योगी भव। बाप दादा को बच्चों का स्नेह ही पसंद है। जो यज्ञ स्नेही और सहयोगी बनते हैं, वो सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। सहयोग सहज योग है। सहयोगी बनते हैं तो सहज योगी भी सहज बन जाते हैं। सहयोग सहज योग है। दिल वाला बाप को दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही प्रिय है। दिल का सहयोग, हाँ, मजबूरी का सहयोग नहीं, दिल का सहयोग। और बाप दादा को दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। कच्चे चावल सुदामा के गाए हुए हैं। वैसे भल कोई कितना भी दे, लेकिन स्नेह नहीं तो जमा नहीं होता। चलो जबरदस्ती कहा भाई देना है, चलो दे दिया, पर स्नेह से नहीं दिया, जबरदस्ती भारी मन से दिया, तो बाबा कहते हैं वो जमा नहीं होता है। स्नेह से थोड़ा भी जमा करते तो वो पदम हो जाता है। हाँ, ये भी कर्मों की गति है। स्नेह से थोड़ा भी जमा करते तो वो पदम हो जाता है। स्लोगन, समय और शक्ति व्यर्थ न जाए, इसके लिए पहले सोचो पीछे करो। समय और शक्ति व्यर्थ न जाए, इसके लिए पहले सोचो पीछे करो। सोच समझ कर करो, क्या इसका नतीजा होगा पहले से ही सोच लो। ऐसे नहीं बिना सोचे समझे कर लिया, फिर नतीजा ठीक नहीं हुआ तो कहेंगे हाय ये क्या किया। तो बाबा कहते इसलिए पहले सोचो पीछे करो। अब अव्यक्त इशारा, आज 1 सितंबर है तो सितंबर मास के लिए अव्यक्त इशारा है। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। बाप दादा बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं। क्या इशारा बाबा दे रहे हैं बच्चों को? बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ। लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद में भस्म करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। दादी जी का महीना कल पूरा हुआ लेकिन सितंबर मास भी आया है, अक्टूबर भी जल्दी आ जाएगा, डबल फॉरेनर्स की सीजन भी शुरू हो जाएगी, बाबा का भी सीजन शुरू हो जाएगा। और आज सोमवार है, कल से भट्टी भी होगी, कल से पटना का ग्रुप आ रहा है, पटना संगीता बहन पटना की जो अभी सेवा केंद्र संभाल रही है पटना में, कुंज दादी के साथ वो रहती थी, वो अभी उनका ग्रुप आ रहा है कल। और हमारी बिंदु बहन खास सिरसा से आई है इस सेवा के लिए। हाँ बिंदु बहन, ओम शांति। हम सब बाबा